नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ली के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। युकाइचो की पुस्तक एक्शनेबल गेमिफिकेशन, गेम जैसे तत्वों के सहारे लोगों को जोड़ने की सही तकनीकों से आगे जाकर व्यवहार प्रेरणा को समझने वाली व्यावहारिक पुस्तक है। इसका विषय केवल खेल, मोबाइल ऐप या मनोरंजन नहीं है, बल्कि उत्पादों, कार्यस्थलों, विपणन, शिक्षा और ग्राहक अनुभवों का डिजाइन है। चो का मुख्य तर्क है कि केवल पॉइंट्स, बैज और लीडर बोर्ड जोड़ देने से टिकाऊ जुड़ाव नहीं बनता। किसी अनुभव की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव प्रेरणा के मूल स्रोतों को कितनी समझदारी से संबोधित करता है। इसी उद्देश्य के लिए लेखक ऑक्टेलिसिस फ्रेमवर्क प्रस्तुत करते हैं, जो प्रेरणा के 8 प्रमुख ड्राइव्स के आधार पर किसी डिजाइन का विश्लेषण और निर्माण करने की विधि है। पुस्तक का स्वर व्यावसायिक और विश्लेषणात्मक है, फिर भी इसका लक्ष्य सिद्धांत को क्रियान्वयन से जोड़ना है। यह पाठक को पूछना सिखाती है कि उपयोगकर्ता कोई काम क्यों करेगा, उसे करते रहने का कारण क्या होगा, और इच्छित व्यवहार को बिना अनुभव को बोझिल बनाए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले पॉइंट्स, बैज और लीडर बोर्ड को समाधान नहीं, डिजाइन के परिणाम के रूप में देखना। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप उस आम धारणा के विरुद्ध है जिसमें गेमिफिकेशन का अर्थ अंक देना, उपलब्धि चिन्ह बांटना और रैंकिंग दिखाना मान लिया जाता है। जो इन्हें बेकार नहीं बताते, लेकिन इनका प्रभाव संदर्भ, समय और उपयोगकर्ता की प्रेरणा पर निर्भर मानते हैं। यदि अंक का कोई अर्थपूर्ण उद्देश्य न हो, बैज वास्तविक प्रगति ना दर्शाए या लीडर बोर्ड केवल कुछ शीर्ष प्रतिभागियों को लाभ दे, तो शुरुआती उत्साह जल्दी समाप्त हो सकता है। ऐसी व्यवस्था उपयोगकर्ता को गतिविधि के मूल मूल्य से हटाकर केवल बाहरी पुरस्कार के पीछे भी ले जा सकती है। लेखक का दृष्टिकोण पहले यह पहचानने को कहता है कि किस व्यवहार की आवश्यकता है, उसे अपनाने में उपयोगकर्ता को क्या बाधा है और उसे आगे बढ़ाने वाली प्रेरणा कौन सी है। इसके बाद उपयुक्त गेम तकनीक चुनी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, प्रोफाइल पूरा करने की प्रगति दिखाना केवल दृश्य सजावट नहीं है, वह अधूरे काम को पूरा करने की मानवीय प्रवृत्ति को सक्रिय कर सकता है। इस तरह पुस्तक यांत्रिक फीचरों की सूची के स्थान पर कारण और प्रभाव की डिजाइन सोच देती है। पॉइंट्स, बैज और लीडरबोर्ड तब उपयोगी बनते हैं जब वे किसी वास्तविक उपलब्धि, स्पष्ट फीडबैक या सार्थक सामाजिक संदर्भ से जुड़े हो। दूसरा, ऑक्टेलिसिस फ्रेमवर्क में मानव प्रेरणा के 8 मूल ड्राइव्स। ऑक्टेलिसिस फ्रेमवर्क पुस्तक की केंद्रीय विश्लेषणात्मक विधि है। यह बताता है कि लोगों को किसी अनुभव में भाग लेने, लौटकर आने और प्रयास करते रहने के लिए 8 प्रकार की प्रेरणाएं प्रभावित कर सकती है। इनमें अर्थ और उद्देश्य की अनुभूति, उपलब्धि और प्रगति, रचनात्मकता तथा प्रतिक्रिया, स्वामित्व और संग्रह, सामाजिक प्रभाव, कमी या दुर्लभता, अनिश्चितता और जिज्ञासा तथा हानि से बचने की प्रेरणा शामिल है। फ्रेमवर्क की उपयोगिता यह है कि यह डिजाइनर को अस्पष्ट शब्दों जैसे एंगेजमेंट के बजाय प्रेरणा के अलग स्रोतों पर विचार करने को बाध्य करता है। कोई व्यक्ति किसी समुदाय में प्रतिष्ठा के लिए सक्रिय हो सकता है, किसी सीखने वाले उत्पाद में प्रगति देखने के लिए, और किसी संग्रह आधारित अनुभव में स्वामित्व की भावना के कारण। इन सबके लिए एक जैसी तकनीक नहीं चलेगी। लेखक यह भी संकेत देते हैं कि एक ही ड्राइव अलग परिस्थितियों में अलग परिणाम दे सकती है। अतः उद्देश्य केवल 8 ड्राइव्स जोड़ना नहीं, बल्कि उचित संतुलन बनाना है। फ्रेमवर्क किसी अनुभव की समीक्षा के लिए भी उपयोगी है। टीम देख सकती है कि उसका उत्पाद किन प्रेरणाओं पर अत्यधिक निर्भर है, कौन सी प्रेरणाएं अनुपस्थित हैं, और क्या उपयोगकर्ता के लिए दीर्घकालिक मूल्य पर्याप्त है। तीसरा, फंक्शन केंद्रित डिजाइन से ह्यूमन फोकस डिजाइन की ओर बदलाव। जो पारंपरिक फंक्शन केंद्रित डिजाइन और ह्यूमन फोकस डिजाइन के बीच स्पष्ट अंतर लगते हैं। फंक्शन केंद्रित दृष्टि में प्राथमिक प्रश्न होता है कि प्रणाली अपना कार्य कितनी कुशलता से करती है। यह आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं। कोई आवेदन तेज, व्यवस्थित और तकनीकी रूप से सक्षम हो सकता है, फिर भी लोग उसे अपनाने या नियमित रूप से उपयोग करने में रुचि ना लें। ह्यूमन फोकस्ड डिजाइन इस कमी को उपयोगकर्ता की भावनाओं, इच्छाओं, आशंकाओं और निर्णय प्रक्रियाओं के माध्यम से देखता है। इसका अर्थ उपयोगकर्ता को छलना नहीं है। बेहतर अर्थ में इसका लक्ष्य ऐसे अनुभव बनाना है जिनमें काम का उद्देश्य समझ आए, अगला कदम सहज हो, प्रगति दिखाई दे और भागीदारी का लाभ महसूस हो। पुस्तक व्यवहारिक अर्थशास्त्र, प्रेरक मनोविज्ञान, उपयोगकर्ता अनुभव और व्यावसायिक परिणामों के बीच संबंध स्थापित करती है। इस दृष्टिकोण में किसी फीचर की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि वह मौजूद है, बल्कि इससे मापी जाती है कि वह वांछित व्यवहार और उपयोगकर्ता अनुभव पर क्या प्रभाव डालता है। इसलिए डिजाइन टीम को उपयोगकर्ता की यात्रा के अलग चरणों को समझना पड़ता है। शुरुआती जिज्ञासा, पहली सफलता, आदत का निर्माण और लंबे समय तक बने रहने की प्रेरणा, प्रत्येक के लिए अलग डिजाइन निर्णय चाहिए। चौथा, व्हाइट हैट और ब्लैक हैट प्रेरणाओं का संतुलन और नैतिक जोखिम, पुस्तक प्रेरक डिजाइन की शक्ति के साथ उसके जोखिमों को भी समझने का आधार देती है। जो कुछ प्रेरणाओं को व्हाइट हैट और कुछ को ब्लैक हैट प्रकृति का बताते हैं। व्हाइट हैट प्रेरणाएं सामान्यतः अर्थ, उपलब्धि, सशक्तिकरण और स्वामित्व जैसी सकारात्मक अनुभूतियों से जुड़ी है। वे व्यक्ति को क्षमता, उद्देश्य या रचनात्मक भागीदारी का अनुभव दे सकती है। दूसरी ओर दुर्लभता, अनिश्चितता और हानि से बचाव जैसी प्रेरणाएं तात्कालिक कार्रवाई बहुत प्रभावी ढंग से करा सकती हैं, पर वे तनाव, दबाव या निर्भरता भी पैदा कर सकती हैं। यह वर्गीकरण नैतिकता का अंतिम निर्णय नहीं है, बल्कि डिजाइन परिणामों पर विचार करने का उपकरण है। उदाहरण के लिए, सीमित समय का प्रस्ताव उपयोगकर्ता को निर्णय लेने में सहायता दे सकता है, लेकिन कृत्रिम कमी लगातार बनाई जाए तो वह भरोसे को कमजोर कर सकता है। इसी तरह अनिश्चित पुरस्कार उत्साह पैदा कर सकते हैं, किंतु उनका अत्यधिक प्रयोग अनुभव को अस्वस्थ बना सकता है। पुस्तक का व्यावहारिक संकेत यह है कि अल्पकालिक रूपांतरण और दीर्घकालिक संबंध को अलग नहीं किया जा सकता। डिजाइनर को यह जांचना चाहिए कि उपयोगकर्ता किस भावना के साथ लौटता है, स्वतंत्र इच्छा कितनी बनी रहती है और प्रणाली उसे वास्तविक मूल्य देती है या केवल प्रतिक्रिया खींचती है। यह दृष्टि गैमिफिकेशन को जिम्मेदार उत्पाद डिजाइन से जोड़ती है। अंत में, उपयोगकर्ता यात्रा के चरणों के अनुसार प्रेरणा और गेम तकनीक का चयन। एक्शनेबल गैमिफिकेशन का व्यावहारिक पक्ष यह है कि एक ही प्रेरक उपाय पूरे उपयोगकर्ता जीवन चक्र में प्रभावी नहीं रहता। पुस्तक अनुभव को अलग चरणों में देखने के लिए प्रेरित करती है, जैसे खोज, आरंभ, आदत निर्माण और दीर्घकालिक जुड़ाव। आरंभिक चरण में उपयोगकर्ता को यह समझना होता है कि अनुभव उसके लिए क्यों प्रासंगिक है और पहला कदम कितना सरल है। यहां स्पष्ट उद्देश्य, मार्गदर्शन और छोटी उपलब्धियां उपयोगी हो सकती है। जब व्यक्ति कुछ बार लौट चुका हो, तब प्रगति, विकल्प, रचनात्मक नियंत्रण और सामाजिक संकेत अधिक महत्वपूर्ण बन सकते हैं। लंबे समय के उपयोग में केवल नवीनता या पुरस्कार पर्याप्त नहीं रहते। उपयोगकर्ता को बढ़ती क्षमता, अर्थपूर्ण संबंध, स्वामित्व या पहचान का अनुभव चाहिए होता है। यह चरणबद्ध सोच उन कंपनियों के लिए उपयोगी है जो सभी लोगों पर एक ही अभियान लागू करने की गलती करती है। फ्रेमवर्क के सहारे टीम यह देख सकती है कि नया उपयोगकर्ता किस बाधा से जूझ रहा है और अनुभवी उपयोगकर्ता क्यों छोड़ रहा है। साथ ही मापन को केवल क्लिक या दैनिक उपयोग तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इच्छित व्यवहार की गुणवत्ता, वापसी की स्थिरता और उपयोगकर्ता के वास्तविक लाभ को भी देखना चाहिए। इस प्रकार गैमिफिकेशन सजावटी परत नहीं, निरंतर परीक्षण और सुधार वाली डिजाइन प्रक्रिया बनती है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उत्पाद प्रबंधकों, उपयोगकर्ता अनुभव डिजाइनरों, विपणन पेशेवरों, शिक्षण मंच बनाने वालों, मानव संसाधन टीमों और उन उद्यमियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें लोगों की भागीदारी बढ़ानी है। यह उन पाठकों के लिए भी उपयोगी है जो व्यवहार परिवर्तन के पीछे काम करने वाली प्रेरणाओं को एक व्यवस्थित मॉडल में समझना चाहते हैं। इसका प्रमुख व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक किसी फीचर या अभियान को केवल आकर्षक विचार के रूप में नहीं, बल्कि प्रेरणा, उपयोगकर्ता यात्रा और अपेक्षित व्यवहार के संबंध में परखना सीखता है। ऑक्टेलिसिस फ्रेमवर्क विचार विमर्श के लिए साझा भाषा देता है, जिससे डिजाइन, व्यवसाय और शोध से जुड़े लोग एक ही अनुभव के अलग पहलुओं पर अधिक स्पष्टता से चर्चा कर सकते हैं। समान विषय की कई पुस्तकों में गैमिफिकेशन को तकनीकों की सूची या सफल उदाहरणों के संग्रह तक सीमित कर दिया जाता है। एक्शनेबल गैमिफिकेशन की अलग पहचान यह है कि वह तकनीकों के पीछे की मनोवैज्ञानिक संरचना पर जोर देती है। फिर भी इसे तैयार नुस्खों की पुस्तक नहीं समझना चाहिए। इसके विचार व्यापक हैं और उन्हें जिम्मेदारी से लागू करने के लिए उपयोगकर्ता संदर्भ, परीक्षण और नैतिक विवेक चाहिए। जो पाठक तत्काल एक पंक्ति वाले समाधान खोज रहे हैं, उन्हें इसका ढांचा विस्तृत लग सकता है, लेकिन जो लोग टिकाऊ जुड़ाव और मानव केंद्रित डिजाइन के बीच संबंध समझना चाहते हैं, उनके लिए यह विषय की आधारभूत और उपयोगी पुस्तक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं यू काइचू, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।